एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज की इस ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
हाँ, पर हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते।
बिल्कुल, आज हम बात करेंगे रिटोरिक पर,
यानी वाक्पटुता या भाषण कला।
और इसके लिए हम रिचर्ड टॉय की किताब रेटोरिक से मिले विचारों का सार प्रस्तुत करेंगे।
ये विषय आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। हम सब सोशल मीडिया, 24 घंटे की न्यूज, विज्ञापनों से घिरे हुए हैं,
और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बता रहा है और कौन सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है।
सही बात है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये किताब हमें यही समझने में मदद करती है कि शब्दों का इस्तेमाल हमें कैसे प्रभावित करता है, और ये भी कि हम खुद अपनी बात को ज्यादा असरदार तरीके से कैसे कह सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं।
बातचीत शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी है।
हाँ, रिचर्ड टॉय कोई साधारण लेखक नहीं है।
वो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर है और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की है।
और उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान वाले अकादमिक नहीं है, उन्होंने दशकों तक ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया है।
बिल्कुल, वो इस बात के विशेषज्ञ हैं कि भाषा, राजनीति और सत्ता के बीच क्या रिश्ता है।
मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि रिटोरिक के नियम क्या हैं।
नहीं, वो एक इतिहासकार की नज़र से देखते हैं कि असली दुनिया में असली नेताओं ने अपने भाषणों से कैसे इतिहास का रुख बदल दिया, विंस्टन चर्चिल से लेकर बराक ओबामा तक।
अच्छा,
उन्होंने सबके बोलने के तरीके का विश्लेषण किया है।
तो उनका नजरिया सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से व्यवहारिक है।
एकदम, वो हमें बताते हैं कि रिटोरिक सिर्फ एक कला नहीं है बल्कि इतिहास को बदलने वाला एक शक्तिशाली औजार है।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में?
देखिए, रिचर्ड टॉय का मुख्य तर्क ये है कि रिटोरिक कोई पुरानी धूल खाती कला नहीं है जिसे सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाया जाए। यह एक जीती जागती ताकत है जो हमारी आधुनिक दुनिया के हर पहलू को आकार देती है।
क्योंकि ज्यादातर लोग रेटोरिक शब्द सुनते ही सोचते हैं
खाली बातें, जुमलेबाजी या धोखा।
हाँ बिल्कुल,
लेखक इसी गलत धारणा को तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रेटोरिक का मतलब सिर्फ लच्छेदार भाषा नहीं है।
तो फिर क्या है?
यह किसी भी स्थिति में अपनी बात मनवाने के सबसे असरदार तरीकों को खोजने की कला है।
अच्छा, ये खोज की प्रक्रिया है।
बिल्कुल, ये किताब हमें एक सफ़र पर ले जाती है। ये सफ़र प्राचीन ग्रीस और रोम से शुरू होता है, जहां अरस्तु और सिसरो जैसे विचारकों ने इसके नियम बनाए।
और फिर ये मध्य युग से होते हुए 18वीं शताब्दी की क्रांतियों तक पहुंचता है।
और सफ़र यहीं खत्म नहीं होता। किताब हमें मास मीडिया यानी अखबार, रेडियो, टीवी के दौर में ले जाती है
और आखिर में आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में लाकर खड़ा कर देती है।
हाँ, किताब का मकसद हमें रेटोरिक के इतिहास और सिद्धांतों से परिचित कराना है ताकि हम आज की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें।
चलिए अब किताब के कुछ मुख्य हिस्सों पर करीब से नजर डालते हैं। पहला अध्याय इसकी क्लासिकल जड़ों के बारे में है ना?
हाँ, लेखक हमें प्राचीन ग्रीस ले जाते हैं और अरस्तु के तीन सबसे जरूरी सिद्धांतों से मिलवाते हैं, ईथोस, पैथोस और लोगोस।
ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं।
हाय, पर इनका मतलब बहुत सरल है। देखिए, ईथोस का मतलब है बोलने वाले का चरित्र और विश्वसनीयता।
मतलब क्या हम उस पर भरोसा करते हैं?
बिल्कुल। पैथोस का मतलब है श्रोताओं की भावनाओं को छूना, जैसे उनमें देशभक्ति या करुणा जगाना।
और लोगोस?
और लोगोस का मतलब है तर्क और सबूतों के आधार पर अपनी बात रखना। टॉय बताते हैं कि कोई भी असरदार भाषण इन तीनों का मिश्रण होता है।
तो इसके बाद के अध्याय बताते हैं कि कैसे ये कला समय के साथ बदली।
हाँ, जैसे ईसाई धर्म ने इसे अपने उपदेशों और धर्म प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, सेंट ऑगस्टीन जैसे विचारकों का मानना था कि सच को फैलाने के लिए भी शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल होना चाहिए।
मतलब औजार वही रहा, मकसद बदल गया।
एकदम। फिर 18वीं सदी का दौर आता है, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों का दौर।
और ये क्रांतियां सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि शब्दों से लड़ी गईं।
सही बात है, नेताओं ने भाषणों और लेखों के जरिए राजशाही को चुनौती दी और स्वतंत्रता और समानता जैसे नए विचारों को लोगों के दिलों में उतारा।
किताब का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा स्वतंत्रता के रिटोरिक पर है।
हाँ, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर और फ्रेडरिक डगलस जैसे नेताओं के भाषणों का विश्लेषण है।
किंग का आई हैव अ ड्रीम भाषण तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
बिल्कुल, कैसे उन्होंने नैतिक, भावनात्मक और तार्किक अपील को मिलाकर पूरे अमेरिका की अंतरात्मा को झकझोर दिया।
लेकिन लेखक इसका स्याह पक्ष दिखाने से भी नहीं हिचके जाते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पूरा अध्याय तानाशाही के रेटोरिक पर है।
इसमें क्या बताया गया है?
इसमें बताया गया है कि कैसे हिटलर जैसे तानाशाहों ने इसी कला का इस्तेमाल नफरत फैलाने, जनता को गुमराह करने और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किया।
वो बड़ा झूठ यानी द बिग लाई और नारों को बार बार दोहराने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे।
हाँ, वो भी है।
और अंत में किताब आज के दौर पर आती है। रेडियो पर चर्चिल के भाषण, टीवी पर कैनेडी निक्सन की बहस,
और आज ट्विटर और फेसबुक का जमाना।
लेखक बताते हैं कि कैसे हर नई तकनीक बोलने और अपनी बात पहुंचाने के तरीके को बदल देती है।
हाँ, आज के दौर में छोटे छोटे साउंड बाइट्स और भावनात्मक ट्वीट ज्यादा असरदार हो गए हैं।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बहुत गहरे संदेश निकल कर आते हैं। पहला और सबसे बड़ा संदेश क्या होगा?
मेरे ख्याल से ये कि रिटोरिक लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है।
एक जागरूक नागरिक होने के नाते
एक जागरूक नागरिक होने के लिए हमें ये समझना होगा कि कौन सी बात तर्क पर आधारित है और कौन सी सिर्फ भावनाओं पर।
दूसरा मुख्य संदेश है क्लासिकल सिद्धांतों की स्थायी ताकत।
ये तो कमाल की बात है। हजारों साल बाद भी अरस्तु के इथोस, पैथोस और लोगोस आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
बिल्कुल, चाहे वो संसद का भाषण हो या इंस्टाग्राम रील, ये तीनों सिद्धांत आज भी काम करते हैं।
एक और दिलचस्प बात है टेक्नोलॉजी की भूमिका।
हाँ, टेक्नोलॉजी ने रिटोरिक को बदला नहीं बल्कि इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है।
सोशल मीडिया एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है जो किसी भी विचार को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पल भर में लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है।
और शायद सबसे जरूरी संदेश है रिटोरिक की समझ, बौद्धिक आत्मरक्षा है।
क्या मतलब?
मतलब आज के सूचना के विस्फोट वाले युग में ये जानना कि कोई हमें कैसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, हमें धोखे और हेरफेर से बचाता है।
अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक कवच है।
बिल्कुल।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक विचार ये है कि रिटोरिक का मतलब कमजोर तर्क को मजबूत दिखाना नहीं, बल्कि किसी भी स्थिति में अपनी बात मनवाने के उपलब्ध साधनों को खोजना है।
ये बहुत गहरी बात है। ये रिटोरिक को धोखेबाजी के आरोप से मुक्त करती है और इसे एक खोज की प्रक्रिया के रूप में देखती है।
हाँ, ये सच्चाई को असरदार ढंग से पेश करने की कला है।
एक और विचार आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठता है। डिजिटल युग में हर कोई एक रिटोरिशियन यानी वक्ता है, चाहे वो ये बात जानता हो या नहीं।
उफ़।
सवाल बस ये है कि हम कुशल वक्ता बनेंगे या अनजाने में इसका इस्तेमाल करने वाले।
ये तो सीधी चोट करता है। हर ट्वीट, हर फेसबुक पोस्ट अपनी बात मनवाने की एक कोशिश है।
और हमें ये सीखना होगा कि हम अपनी बात जिम्मेदारी से कैसे कहें।
और एक चेतावनी भी है। सबसे खतरनाक रिटोरिक वो नहीं है जो साफ साफ चालाकी भरा लगे, बल्कि वो है जो तटस्थ जानकारी होने का मुखौटा पहने हो।
बिल्कुल। जब कोई ये दावा करे कि वो सिर्फ तथ्य बता रहा है, तभी हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
क्यों?
क्योंकि तथ्यों को पेश करने का तरीका भी एक बहुत शक्तिशाली रिटोरिक होता है।
तो सवाल उठता है कि हम इस ज्ञान का अपनी असल जिंदगी में क्या करें? इसके बहुत सारे व्यवहारिक उपयोग हैं।
सबसे पहले तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। अगली बार जब आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दें, तो ईथोस, पैथोस और लोगोस के बारे में सोचें।
मतलब अपनी विश्वसनीयता यानी ईथोस दिखाने के लिए अपने पिछले सफल काम का जिक्र करें।
सही।
अपनी टीम की भावनाओं मतलब पैथोस से जुड़ने के लिए बताएं कि ये प्रोजेक्ट सबके लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
और अपनी बात को साबित करने के लिए स्पष्ट डेटा और तर्क यानी लोगोस पेश करें।
बिल्कुल। दूसरा, मीडिया को समझने में। अगली बार जब आप कोई राजनीतिक भाषण सुने या कोई विज्ञापन देखें, तो उसका विश्लेषण करने की कोशिश करें
कि क्या इसमें भावनाओं का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
हाँ, या क्या तर्क खोखले हैं। ये आपको एक ज्यादा जागरूक उपभोक्ता और नागरिक बनाएगा।
यहाँ तक कि निजी रिश्तों में भी ये काम आ सकता है।
वो कैसे?
अपनी बात को शांति और तर्क से रखना, सामने वाले के नजरिए को समझना और भरोसे यानी ईथोस को बनाए रखना, ये सब बेहतर रिश्तों की कुंजी हैं।
तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि भाषा कभी भी तटस्थ नहीं होती। हर शब्द, हर वाक्य कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है,
हमें कुछ सोचने, महसूस करने या करने के लिए।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि 2500 साल पुराना सिद्धांत आज भी कितने प्रासंगिक हैं।
सही बात है।
दुनिया बदल गई, तकनीक बदल गई, लेकिन इंसान को अपनी बात मनवाने के बुनियादी तरीके नहीं बदले।
तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कोई बहस सुने, कोई खबर पढ़ें या खुद अपनी कोई बात रखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचें,
क्या यहाँ सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है या रिटोरिक अपना काम कर रहा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है खेत फाउंडेशन द्वारा।